ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग प्रस्तुत करता है इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंज।
नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग की ओर से आयोजित दो दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के दोनों सत्र आपको आनंदित करने वाले रहे होंगे और गहन चिंतन की ओर ले चलने वाले रहे होंगे, क्योंकि बाहर तो हमने बहुत यात्राएं की हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अंतर की यात्रा की आवश्यकता है, ताकि हम खुद को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, पहचान सकें और अपनी आंतरिक क्षमताओं को भी वैसे इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें, जैसा हमें करना चाहिए और समाज और संसार को, मुझे लगता है, इसकी आज सतत आवश्यकता है। हमें अपने चारों तरफ कई प्रकार की दुकानें दिखाई देती हैं जहां से हम अपनी आवश्यक चीजें खरीद लेते हैं। हमें दूध चाहिए, अपने जीवनोपयोगी जो भी सामान है उन सब के लिए आपको दुकान मिल जाएंगे, लेकिन यदि मुझे शांति की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है या आनंद की जरूरत है, तो इसके लिए कहीं बाहर आपको दुकान नहीं दिखाई देंगे, और इसकी ही आवश्यकता आज हमें है। इनर स्ट्रेंथ की जो हम बात कर रहे हैं, क्या कहीं भी आपको बाहर ये प्राप्त हो सकता है? कतई नहीं। इसके लिए तो हमें अपने अंदर ही जाना होगा। साइकोलॉजिस्ट भी ये बात मानते हैं कि हम अपनी आंतरिक क्षमताओं, शक्तियों का केवल 5-7% ही यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10%, बाकी की सारी सोई हुई हैं। कैसे उसे जागृत करें, क्या उसकी विधि हो सकती है, इस पर हम सबको गहराई से जरूर विचार करना चाहिए, और इसीलिए आज के इस सत्र का विशेष करके थीम ही रखा गया है, राजयोगा फॉर इनर स्ट्रेंथ। तो आइए इस विशेष सत्र की शुरुआत करते हैं हमेशा की ही तरह शुभकामनाओं से, आशीर्वचनों से, और इसके लिए हमारे बीच आ रहे हैं श्री अरुण देव गौतम जी, IPS, गृह सचिव छत्तीसगढ़, और इसके साथ साथ हमारे बीच होंगे श्री रामफल पवार जी, IPS डायरेक्टर NCRB। आप दोनों ही राजयोग का कुछ समय से सुंदर अभ्यास कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में भी इसके जो उपयोग हैं, लाभ हैं, उससे सबको लाभान्वित कर रहे हैं। तो आइए शुभकामनाओं से शुरुआत करते हैं।
नमस्कार, मैं अरुण देव गौतम 1992 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं। वर्तमान में सचिव गृह विभाग के पद पर पदस्थ रहते हुए महानिदेशक नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का भी प्रभार देखता हूं। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों को समझते हुए आदमी के मन मस्तिष्क पर उसका कितना प्रभाव पड़ा है, किस तरह से वो हताशा, दुराशा और डिप्रेशन की स्थितियों में जा रहा है, इसको लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो जिस प्रकार से चिंता व्यक्त की गई है और जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर बहुत मौजू है, बहुत सुसंगत है। समाज में इस महामारी के भय ने इस कदर परिस्थितियां पैदा की हैं कि शरीर के अतिरिक्त मानसिक तौर पर भी लोग बहुत भयाक्रांत हैं और बहुत दुराशा में जी रहे हैं। इसकी शुरुआती दौर को अगर हम स्मरण करें तो इसके प्रभाव से पूरे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां बंद हो गईं, यहां तक कि मंदिर और सारे धार्मिक आयोजन भी बंद हो गए। लोगों के पारिवारिक विवाह और जन्मदिन इत्यादि के उत्सवों पर भी इसकी बहुत बुरी मार पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में एक जो स्वाभाविक मुदिता, एक स्वाभाविक प्रसन्नता का भाव रहता है, वो पूरी तरह से डगमगा गया और लोगों में एक गहरी दुराशा जन्म लेती चली गई। जहां तक सुरक्षा बलों की भूमिका का प्रश्न है, इसमें शुरुआत से ही इन्होंने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है। लॉकडाउन इन्फोर्स करने से लेकर के और उस लॉकडाउन में जरूरत के सामानों और औषधियों तक के का प्रबंध इन सुरक्षा बलों ने किया है, और लॉकडाउन के विशेष लागू करने के दौरान ही एक सबसे बड़ा डायलेमा जो उनके बीच में था कि लोगों को आवागमन से भी रोकना है, लेकिन जिन लोगों को औषधि, इलाज और जरूरी सामानों की आवश्यकता है वो भी उन तक पहुंचाना आवश्यक है। इस तरह से संतुलन बनाते हुए सुरक्षा बलों ने इस पूरे महामारी के दौर में जो कार्य किया है वो निश्चित तौर पर उनके त्याग और बलिदान का प्रतीक है। मैं ये मानता हूं कि सुरक्षा बलों ने बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी या अपने कर्तव्य, जो निर्धारित कर्तव्य हैं, जो कानून में विहित कर्तव्य हैं, उससे बहुत आगे जाकर के कार्य किया है। ऐसी स्थिति में अब हम देखते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हुई कि जब उनके परिजन भी संक्रमित होने लगे तो उसमें वो स्वयं अपनी परवाह न करते हुए जहां एक और उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी, वहीं उन्होंने संक्रमित व्यक्तियों को के खान पान और उनके इलाज का समुचित प्रबंध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक दूसरा मुद्दा प्रवासी भारतीयों के, प्रवासी मजदूरों के वापसी का रहा है। उस दौरान पूरे देश में ऐसे करुणाप्रद दृश्य देखने को मिले हैं जहां बिना सार्वजनिक परिवहन के तमाम मजदूर अपने सामान, छोटे बच्चे और महिलाओं के साथ पैदल चलते नजर आए। ऐसी परिस्थितियों में भी बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से सुरक्षा बलों ने न केवल उनको शरण, आश्रय स्थल, भोजन उपलब्ध कराया, वरन उनको जूते, चप्पल इत्यादि की भी व्यवस्था की। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां एक ओर अपनी नियमित ड्यूटीज, अपराध के अनुसंधान और कानून व्यवस्था का कार्य, महती कार्य किया उन्होंने, उसके अतिरिक्त इस प्रकार के बिल्कुल ही नए विषयों में लेकर के सुरक्षा बलों ने जो भूमिका निभाई है वो निश्चित तौर पर साधुवाद की प्रतीक रही है। कहीं थोड़े बहुत अपवाद समक्ष में आए हैं, वो सब ये मैं मानता हूं कि वो आवेश के कारण किसी परिस्थितिवश ऐसे उल्लंघन हुए हैं जहां बल को थोड़ा सा अधिक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसे मैं अपवाद मानकर ये मानता हूं कि इन विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की घटनाएं होना बहुत स्वाभाविक है। अंत में मैं ये मानता हूं कि इस संकट काल में सुरक्षा कर्मियों के इस आचरण एवं चरित्र की उदात्तता से ये पूरी तरह आश्वस्ति का भाव पैदा होता है कि हम इस महामारी को न केवल जीतने में कामयाब होंगे बल्कि हम पूरे देश के मानस को, उसके मन में व्याप्त भय और आतंक को भी जीतने में कामयाब होंगे और एक मन में शांति का वातावरण उदित होगा। इसमें इस संस्थान की, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जो पूर्व से भी भूमिका रही है और अभी भी जो ऑनलाइन इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई और बहनों नमस्कार। ब्रह्म कुमारी के जो इस प्रोग्राम इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंज, इसमें मुझे जुड़ने पर काफी खुशी हुई है। असल में ब्रह्म कुमारी ऐसे काफी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती रहती है मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सनल के लिए, और ये जो प्रोग्राम है इनर स्ट्रेंथ पर, इस पर आत्म बल पर, ये हम सब के लिए एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी का, हमारे सोच का, हमारे लाइफ का। हम सब ट्रेनिंग से ही आत्मबल पर विश्वास देते और बल देते आ रहे हैं। हमें पता है कि पुलिस में या पैरामिलिट्री और मिलिट्री में बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और इसके लिए काफी एक आंतरिक हिम्मत चाहिए होती है, और ये हिम्मत हमें ट्रेनिंग से ही हमारे अंदर डाल दी जाती है, और यही कारण है कि सख्त से सख्त मुश्किलों को भी हम ज्यादा परवाह न करते हुए उनके अंदर घुस जाते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। तो ये कहते ना, आधी लड़ाई तो अपने मन में ही जीत ली जाती है। जब मन सख्त है और डिटर्मिनेशन है और इरादा पक्का है तो हम अपने हर काम में सफलता, चाहे वो कैसा भी मुश्किल काम क्यों ना हो, उसमें सफलता पाते हैं। ये जो प्रोग्राम है सेल्फ एम्पावरमेंट का, जिसमें आत्मबल पर काफी इम्पोर्टेंस दी गई है, ये हम सब पुलिस और पैरामिलिट्री और आर्मी के जवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यू नो ऐसे अगर देखा जाए तो आत्मबल है क्या, ये वो अपने ऊपर भरोसा या अपनी सोच पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास, और कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, तो ये एक पॉजिटिव सोच हुई। हर काम में हम पॉजिटिव सोच रखें तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, वो काम आसान हो जाता है। आज के इस महामारी के युग में भी आप देख रहे हैं कि पुलिस पर्सनल यू नो कोविड वॉरियर की भांति उनकी तरह हर कदम से कदम मिलाकर आगे पब्लिक के लिए और सबके लिए हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और अपनी जान की कोई परवाह भी नहीं करते। तो ये इसी आत्मबल की सोच का ही एक नतीजा है कि हम इन चीजों के लिए ट्रेंड हैं और ये सब काम हम आसानी से कर पाते हैं। तो मुझे खुशी है कि ब्रह्म कुमारी की जो धारणा है कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, अंदर एक स्ट्रेंथ अपने आप बिल्डअप हो जाती है कि हम हर काम को सोचें कि ये हो सकता है और परमात्मा हमारे साथ है, तो हमें कोई काम मुश्किल नहीं नजर आएगा। पॉजिटिव सोच से जैसे मैंने पहले बताया कि आधी जीत तो वैसे ही आ जाती है और ताकत डबल हो जाती है। अगर हम इसके विपरीत अगर नेगेटिव सोचते रहें तो हमारी ताकत या पावर डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है और हम हार जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, सोच को पॉजिटिव रखें और हिम्मत बनाए रखें, और आज के इस महामारी के युग में भी ये बहुत जरूरी है कि हम ना कि खुद की हिम्मत बनाए बल्कि जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो हमारा स्टाफ है, कोऑर्डिनेट है, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब की हिम्मत भी बनाए रखें। और घर में सब पॉजिटिव बातें करें, ऑफिस में पॉजिटिव बातें करें, सबको उत्साह के साथ उनको डील करें और गुस्सा ना करें। आपको पता है कि गुस्सा कब आता है, जब आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं, वो भरोसा नहीं कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, तो नेचुरली गुस्सा आता है। तो गुस्सा ना करना भी एक अपने आप में एक सफलता है कि आपने वो सामर्थ्य है, वो सोच है, वो हिम्मत है कि आप कठिन से कठिन स्थिति का भी मुकाबला कर पाएंगे। और इसके लिए कंटिन्यूस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आत्मबल को बढ़ाना या गुस्सा ना करना या पॉजिटिव सोचना या मन को शांत रखना। तो जो मन का जो टॉलरेंस लेवल है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा कि आप हर तरह की मुश्किल चीजों को आसानी से बगैर कुछ घबराए आप सहन कर सकते हैं। और इसके लिए जो राजयोग मेडिटेशन वो बहुत काम आती है। मैंने भी कई बार ये कोर्स किए हैं और जब जब ये कोर्स किए हैं उनके बाद मुझे लगा है कि मैं एक बेहतर क्षमताशील हुआ हूँ और हर स्थिति को संभालने का सक्षमता ना बढ़ी है। तो आप लोग भी महसूस करेंगे अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं और हर टाइम परमात्मा से बात करते हैं, कहते हैं कि मैं एक शांतिशील आत्मा हूँ, कॉन्फिडेंट आत्मा हूँ, यहाँ सब ठीक है और मैं हर किसी स्थिति का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं सभी मेरे अपने हैं, तो ऐसी पॉजिटिव सोच करेंगे तो बड़ी से बड़ी महामारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और सिचुएशन नॉर्मल तो होनी है, एक दिन नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सोच आप ज्यादा से ज्यादा रखें और ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में आप भाग लें, सुने, और अपने जो कलीग्स हैं उनको भी प्रोत्साहित करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और ज्यादा से ज्यादा बार इसमें जुड़ें और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सचमुच देश की सेवा में जो आपने अपना योगदान दिया है हमें भी बहुत प्रेरित करता है, उत्साहित करता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन औरों के लिए, देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना, ये आप सबसे हम सीखते हैं। और ऐसे ही जवान हैं आईटीबीपी के भी जवान जो लगातार देश की सेवा में लगे हुए रहते हैं। जब हम अपने इन जवानों को देखते हैं तो हमारे अंदर भी देश प्रेम का एक जज्बा जागृत होता है। बचपन से ही वो सुंदर सी कविता सुनते आ रहे हैं कि हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, तुझको प्रसन्न देखो बस लालसा यही है, फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर लय हो। कितने भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें देश सेवा का ऐसा सुंदर अवसर मिलता है। और हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि आपकी थोड़ी सी सेवा करने का हमें भी भाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सबको आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच होंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी, जो कि सिक्योरिटी सर्विस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हैं उनकी आप निदेशिका हैं। तो आइए अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। आज हम आप सभी देश की सेवा में समर्पित अपने सेवा के साथियों से मैं मिल रही हूं। आप सबकी कुर्बानी, आप सबका त्याग, आप सबका बलिदान, आपकी सेवा जो आप देश के लिए न्यौछावर हैं, आपकी कुर्बानी अतुलनीय है, अवर्णनीय है। बस मैं तो दूर बैठे आपकी छोटी बहन हूं, आपके लिए ये सद्भावना रखती हूं, शुभ भावना रखती हूं कि आप विजयी रत्न बने, सफलता मूरत बने, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगर हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि मुझे विजयी बनना है, मुझे सफलता मूरत बनना है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम अपने जीवन में आइए कुछ मूल्यों को अपनाएं। ऐसे तो आप सबके पास बहुत सारे मूल्य हैं, सद्गुण हैं, जिसके बल से आप चल रहे हैं, सेवा में तत्पर हैं, जिसे आप सबके अंदर दृढ़ता, साहस, धैर्यता, बहुत सारे सद्गुण हैं आप सबके अंदर, जिसके बल से आप चल रहे हैं, सेवा में तत्पर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितना हमारे में दृढ़ता होगी, आत्मसंयम होगा, आत्मनिश्चय होगा, किसी भी परिस्थिति में आप देखते हैं कि आप तो ऐसे क्षेत्र में हैं कि कब कैसी परिस्थिति आती है, कब कैसी परिस्थिति, और अचानक की परिस्थिति में कदम उठाने पड़ते हैं। उस परिस्थिति में जब हम धैर्यता से, साहस से, दृढ़ता से, निश्चय से कदम उठाते हैं तो सफलता मूरत बनती है। तो आज तो आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में, संसार में, खाली देश का नहीं, जीवन में और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हमें ये लक्ष्य रखना है कि हम अपने जीवन में, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो या कभी भी कोई विषम परिस्थिति भी आ जाती है, अचानक भी कोई बात हो जाती है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, आत्म संयमित रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे, साहस नहीं खोएंगे और सबसे बड़ी बात अपना मनोबल। परिस्थिति कैसी भी विपरीत है, परिस्थिति विपरीत है, उम्मीद की एक भी किरण नहीं है, लेकिन मेरा साहस, मेरी दृढ़ता, मेरा निश्चय कायम है कि मैं विजयी बनूंगा। अगर मेरा मनोबल सशक्त है, मेरा संकल्प शक्तिशाली है, तो विपरीत परिस्थिति में भी हम विजय का झंडा जरूर लहराएंगे। मीठे भाई बहनों, आप सबके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, ढेर सारी दुआएं दे रही हूँ। आप ऐसे महान कार्य में, महान सेवा में तत्पर हैं, तो आपके लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। आप सदा सफलता के पथ पर चलते रहें, आपके कदम आगे बढ़ते रहें। ओम शांति, ओम शांति।
दुआओं और आशीष में सचमुच बहुत बल है, हमारी कार्य को वो सहज और सरल कर देता है। दीदी, आपने जो आशीष हमें दिया है, अपनी दुआएं प्रदान की हैं, निश्चित रूप से हमारा जीवन उससे सहज, सरल और आनंद से परिपूर्ण होगा। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहते हैं कि राजयोग एक भारत की प्राचीनतम विद्या है, एक ऐसी विद्या जो असंभव को संभव करने वाली है, एक ऐसी विद्या जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, एक ऐसी विद्या जो व्यक्ति को मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। सुनते तो जरूर आए हैं, लेकिन है क्या ये राजयोग, इस पर कभी गहराई से न हमने सोचा और न ही हमें ये प्रकाश प्राप्त हुआ। इसीलिए आज का जो सत्र है, राजयोग फॉर इनर स्ट्रेंथ, इसीलिए रखा गया है ताकि हम राजयोग को समझ सकें कि ये राजयोग है क्या और कैसे ये हमारी आंतरिक क्षमताओं और शक्तियों को जागृत करता है। हम मेडिटेशन की शक्ति को भी जानते हैं कि कैसे मेडिटेशन हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारी मदद करता है, कैसे ये हमारे जीवन को सर्वांगीण विकास की ओर ले चलता है। राजयोग उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी व्याख्या वेद शास्त्र और पुराणों में भी है। तो है क्या ये राजयोग, इस पर गहराई से प्रकाश डालने के लिए आज के विषय पर अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं प्रोफेसर ईवी गिरीश जी को, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। भारत के अलग अलग भागों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, हमारी आर्मी, नेवी, साथ ही एयरफोर्स के साथ साथ CRPF और अलग अलग राज्यों के पुलिस बलों को भी आपने ट्रेनिंग प्रदान की है, अपने वक्तव्य से उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ईवी गिरीश जी को।
ओम शांति, नमस्ते। राजयोगा फॉर इनर स्ट्रेंथ, इस कार्यक्रम में आप सभी सुरक्षा बल के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जब हम इनर स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो दो बातें समझना बहुत जरूरी है, एक है आउटर स्ट्रेंथ और दूसरा है इनर स्ट्रेंथ। आउटर स्ट्रेंथ का अर्थ ये है कि बहुत सारे पावर्स होते हैं जो मनुष्य जिंदगी भर प्रयास करता है उसे प्राप्त करने के लिए, वो मनी पावर हो सकता है, मसल पावर हो सकता है, पोजिशनल पावर हो सकता है, पोस्ट का पावर हो सकता है, सोसाइटी में स्टेटस का पावर हो सकता है, और आप लोगों को तो लीगल पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी प्राप्त होते हैं। और मनुष्य शायद सारा जिंदगी भर इन पावर्स को अक्वायर करने में अपना समय व्यतीत करता है, और इस प्रोसेस में वो जो इनर पावर है या इनर स्ट्रेंथ है, उस पर से हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। और इनर स्ट्रेंथ का अर्थ है आंतरिक शक्ति। जब हम इस शरीर को देखते हैं और आंतरिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो क्या है मेरे अंदर जिसको मुझे सशक्त बनाना है? तो जो फिजिकल लेवल पर मुझे नजर आ रहा है, ये एक्सटर्नल है, और इसको चलाने वाली जो सत्ता है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो उसको सशक्त बनाना, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी जो विधि है वो है राजयोग। मुझे याद आता है एक बार एक व्यक्ति चल के जा रहा था, और जैसे ही वो चल के जा रहा था तो उसे घोड़े के कदमों के आवाज सुनाई देता है कि कोई घुड़सवार घोड़े को लेकर के नजदीक आ रहा है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एक घोड़े पर एक सवारी बैठा है और वो उसके नजदीक आ रहा है। तो जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है तो ये जो व्यक्ति है, जो घोड़े पे सवार जो व्यक्ति है, उसको पूछता है, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? तो जो घुड़सवार व्यक्ति है वो कहता है, प्लीज आस्क द हॉर्स, घोड़े को पूछो। शायद इसका तात्पर्य ये है इस छोटे से कहानी का, हम भी दौड़ रहे हैं, हम भी जीवन यात्रा पर अग्रसर हैं, लेकिन उस जीवन यात्रा को किस दिशा में कहां को लेकर जाना है वो मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूं। वो फिर एक्सटर्नल बातें, बाह्य जगत की बातें, मेटीरियलिस्टिक बातें, फिजिकल लेवल की जो बातें हैं, वो मुझे ड्राइव कर रहा है। और शायद आप लोगों ने इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझा होगा कि मैं जो यथार्थ में मेरा जो ओरिजिनल परिचय है, मैं इस शरीर से अलग हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, जिसको एनर्जी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, एक लाइफ फोर्स कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है, वैसे ही इस घोड़े रूपी शरीर को दौड़ाने वाला इसका जो मालिक है वो आत्मा है। और जब हम आंतरिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं, इनर स्ट्रेंथ के बारे में या इनर एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, उसका सिंपल तात्पर्य ये है, आत्मबल, आत्मा को शक्ति प्रदान करना, जिसको हम आत्मविश्वास भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो आत्मा है, जैसे कि शरीर है, इसमें बहुत सारे अंग हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, हड्डियां हैं, वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाना, अर्थात सबसे सिंपल तरीका या सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आत्मा के अंदर मन रूपी शक्ति को सशक्त बनाना। मन मुझे दौड़ा रहा है या मैं मन को कंट्रोल कर रहा हूं? घुड़सवार घोड़े को नियंत्रण पे रख कर उसको कंट्रोल करके चला रहा है, या घोड़ा जहां मर्जी चल रहा है तो मालिक भी वहीं चल रहे हैं? एम आई ड्रिवन बाय माई माइंड और आई एम इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई माइंड? इसीलिए मन के लिए कहते हैं, मन या तो उसको मैं एक बहुत अच्छा ओबीडियंट सर्वेंट बना दूं, या फिर वो बहुत खतरनाक डेंजरस मास्टर बन सकता है। और अगर मन बहुत डेंजरस मास्टर बन गया तो वो फिर वो घोड़े की तरह मुझे यहां वहां लेकर के जाएगा। और अगर मैंने मन को एक बहुत सुंदर आज्ञाकारी सर्वेंट बनाया, अर्थात मैं आत्मा मालिक अपने मन को कहता हूं, हे मन, तुम्हें ये गलत बात नहीं सोचनी है अगले कुछ क्षण। और वर्तमान समय में एक, मैं तो समझूंगा कि एक युद्ध ही है एक प्रकार का, जहां पर हम सब मानव जीवन का वैश्विक तौर पर ग्लोबली हम सबका जो जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं वो एक एक वायरस है, और उन्होंने कोई भी विश्व के किसी भी कोने को नहीं छोड़ा। और जिस प्रकार के वर्तमान के हालात हैं विशेष भारत में, वो तो एक वॉर फुटिंग पे जैसे कि हम युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध में क्या होता है, हम हर चीज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं। और मुझे जब भी सुरक्षा वर्ग के लोगों के साथ, आर्मी है, नेवी है, पुलिस फोर्स है, उनके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, उनमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत सेल्फलेस तरीके से काम करते हैं। आज कोविड के दौरान भी पूरे भारत में हमारे जो पुलिस के लोग हैं, दे वेयर इन द फ्रंट लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए, और उसके चलते हमारे कितने पुलिस के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो ये वर्तमान परिस्थिति में एक चीज जो उभर करके आ रहा है, ऐसा समाचार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है या रिपोर्ट से कहता है कि भले कोविड थोड़ा हल्का भी हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इसने जो नेगेटिव इंपैक्ट किया है मानव मन में, किस प्रकार से किसी ने अपने नजदीक के रिश्तेदार को या अपने संबंधी को खोया है, किन हालातों में, और उसका जो इंपैक्ट है, और उसके चलते मन के अंदर जो भय और जो डर पैदा हुआ है कि अगर मुझे हो जाएगा तो फिर शायद अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं प्राप्त हुआ, या फिर मुझे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सुविधा नहीं है, या वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, दवाई नहीं है, वो जो भय है, ये सब हमारे मन को इंपैक्ट करता है। और बहुत जरूरी है कि ऐसे हालातों में जहां पे बाहर की परिस्थिति रिसोर्स, लेकिन इंस्पिरेशन जो होता है वो मैं इंडियन आर्मी से, हमारे सुरक्षा बल से ड्रॉ करता हूं। युद्ध के मैदान में भी जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होता है, लेकिन कोई भी भारत का सैन्य कर्मी कभी रोता नहीं है, घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, जो चीज अवेलेबल है उसको लेकर वो दुश्मन के साथ भिड़ जाता है, सामना करता है, तब जाकर परमवीर चक्र से सम्मानित एक एक हमारे जवानों के, आर्मी और पुलिस के लोगों के सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान की कहानी सुनूं तो उन्होंने हर चीज को दांव पे लगा दिया, लेकिन मन, भारत की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, ऐसे ही दृढ़ता के साथ, मनोबल के साथ, हौसले के साथ, उमंग उत्साह के साथ, स्वयं को भी आगे बढ़ाना है, वायरस से बचाना है, अगर वायरस कोविड हो जाता है तो उसको बहुत अच्छी रीति से जो भी दवाइयां हैं या इलाज है वो करना है, और साथ में साथियों को भी, फैमिली मेंबर्स को भी, समाज के हर वर्ग के तबके के लोगों को, के अंदर मुस्कुराहट, उमंग, उत्साह, कि हम सब मिल करके इसका बहुत अच्छा सामना करेंगे। ये तभी हो सकता है जब हमारा मनोबल बहुत प्रबल हो, शक्तिशाली हो। उसके लिए एक विधि, एक जो तरीका जहां मैं अपने आप को समझूं और वो सब चीजें एडॉप्ट करूं जिससे मैं स्वयं को शक्तिशाली बना देता हूं, वो है राजयोग। इस संसार में बहुत प्रकार के योग हैं, भक्ति योग, हट योग, कर्म योग, सांख्य योग, निद्रा योग। इन योगों में जो राजा है, सर्वश्रेष्ठ योग है, वो है राजयोग। और राजयोग क्या, किस बात का प्रतीक है? राजयोग में हम स्वयं को, मैं आत्मा, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपने संस्कारों का भी राजा, अपने स्वभाव का राजा। विपरीत परिस्थिति में मैं राजा, मैं आत्मा राजा, राजयोग का अभ्यास करने से अपने मन को कहता हूं, हे मन, घबराना नहीं, हिम्मत रखो, होपफुल रहो, आशावादी रहो। और ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, बहुत सुंदर विधि है ये राजयोग, स्वयं का राजा बनना। और इसमें दो तीन बातें हमें करनी है राजयोग के अभ्यास में। सबसे पहला, राजयोग में स्वयं के बारे में सत्य ज्ञान, द ट्रू अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट हु आई एम, जिसको आप सब ने सुना भी कि मैं इस शरीर से अलग, मैं इस रोल से अलग, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई एबिलिटी, इनर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। या तो मैं घबरा करके रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, या शक्तिशाली बनकर, होपफुल बनकर, पॉजिटिव बनकर सामना कर सकता हूं। तो मेरी रिस्पॉन्स की एबिलिटी क्या है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि मेरी मनोस्थिति कैसी है, मन की अवस्था कैसी है, मन की शक्तिशाली अवस्था है या नहीं। इसी को हम इनर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मैं को जानना, उसकी शक्तियों को पहचानना, उसके गुणों को, मूलभूत गुणों को पहचानना, कि जो मैं आत्मा हूं, बाय डिफॉल्ट उसका इननेट, एब्सोल्यूट, इंट्रिंसिक जो नेचर है, वो शांति है, वो सुख है, वो आनंद है, वो प्रेम है, उसी का बना है, यही मेरा नेचुरल नेचर है, यही मेरा फैक्ट्री सेटिंग है, मेरा आरएनए डीएनए में ये कूट कूट के भरा। लेकिन हम भूल गए, भूलने की वजह से मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, घबरा जाता हूं, डर जाता हूं। तो इस बात का बोध, सदा ये स्मृति, इस अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस कि मैं कौन हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और राजयोग में जो पहला स्टेप होता है, हम स्वयं को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम स्वयं के साथ किस भाव में और किस स्तर पर और किस लेवल में और किस पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हैं। मेरा क्या होगा, कोविड पॉजिटिव होगा तो फिर मेरा सीटी स्कैन रिपोर्ट कैसा होगा, फिर क्या हॉस्पिटलाइजेशन, अब ये सब मैं अपने ही साथ बात कर रहा हूं। और दीज, ये जो बातें कर रहा हूं, ये एनकरेजिंग नहीं है, ये बहुत डिप्रेसिंग है। या फिर मैंने टीवी देख लिया और टीवी में समाचार आया, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतना तकलीफ हो रहा है, और लोगों के दुख भरी दास्ताएं सुनाई जा रही है। ठीक है, दैट कुड बी अ फैक्ट, लेकिन वो सब देख करके मेरा अपने साथ जो सेल्फ टॉक है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है। तो स्वयं के साथ सकारात्मक बातें करना, स्वयं के साथ जब अकेले में है तो मेरा मेरे साथ का कॉन्वर्सेशन कैसा है, इन व्हाट लैंग्वेज, इन व्हाट वर्ड्स, इन व्हाट क्या कहूं मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बातें अपने साथ कर रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट आधार राजयोग का, और वो है परमात्मा। उसके बारे में भी आपने बहुत सारी बातें सुनी, जैसे सूर्य होता है, सूर्य के किरणों के बगैर, विदाउट सनलाइट लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हमारा मानव जीवन रह पाएगा, नहीं तो लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही आत्मा को सस्टेन करने के लिए, आत्मा का अपना जीवन रूपी यात्रा बहुत सुखदायी हो, बहुत शांतिमय हो, उसके लिए आत्मा को सुख शांति आनंद चाहिए। और परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, उसके साथ मुझे अपना मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, शक्तियों को ड्रॉ करना पड़ेगा, शक्तियों को अपने अंदर भरना पड़ेगा। और व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, उन शक्तियों को के आधार से कर्म में आना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो यही है ना, जब हम एक्शंस में आते हैं तो कभी गुस्सा आ जाता है, कभी देख करके चिढ़ हो जाता है, कभी देख करके बातें को देख करके कभी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। नाउ दिस इज द वे आई एम हैंडलिंग लाइफ, दिस इज द वे आई एम कंडक्टिंग माई सेल्फ, दिस इज माई बिहेवियर। और इसी को मैंने अगर चेंज कर लिया, सब करना वही है लेकिन शांति से, प्यार से, शक्तिशाली होकर के, बिना हताश हुए, बिना अपना टेम्पर को लूज किए, तो वो कैसे हो सकता है? जब मैं उन बातों को, उन शक्तियों को भरूंगा। और उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स परमात्मा है। सो राज योगा मेडिटेशन, योग मीन्स कनेक्ट, योग मतलब जुड़ना, संबंध जोड़ना, दो और दो का योग चार, 2+2=4, सिनर्जी। इसी तरह मैं अपनी आत्मा के साथ जुड़ू, अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी के साथ जुड़ू, ओरिजिनल नेचर के अनुभूति में रहूं। और ओरिजिनल नेचर हर आत्मा का बाय डिफॉल्ट बहुत बहुत अच्छा है। और दूसरा, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो हम उसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ प्लग करते हैं, वहां से एनर्जी आके इसका बैटरी चार्ज हो जाता है। इसी तरह सुख का जो स्रोत है, सुख का जो सूर्य है, शांति का जो सूर्य है, जो सोर्स है, उसी को परमात्मा कहा। जब मैं आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होता हूं, वो शक्तियां आती है। और एक बार वो शक्ति का प्रवाह आ जाता है तो हमारा जो जीवन है और जो जीवन का उद्देश्य है, उसके आधार से मैं जीवन को कंडक्ट कर पाता हूं। और जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके लिए जीवन को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, एक अनुभूति है। पूरे 24 घंटे सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक मैं किस अनुभूति के आधार से जीवन जिया, दैट इज द क्वालिटी ऑफ माय लाइफ। 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम डर के आधार पे था, तो जीवन की क्वालिटी डर वाली। और पूरा 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम बड़े शांत, बड़े होपफुल होके, बड़े शक्तिशाली होकर के अगर मैंने वो अनुभव किया लाइफ को, तो देन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय लाइफ? वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेरी एलिवेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब प्रश्न ये उठता है, ये एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ पीस, एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग पावरफुल, नॉट हेल्पलेस, नॉट बीइंग होपलेस, बट बीइंग वेरी होपफुल, लेट मी डू माई बेस्ट एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। और ये जो अनुभूति है, ये ही आज जो अनुभव किया, कल जो अनुभव किया, परसों अनुभव किया, एक महीना, एक साल, अनेक वर्ष, और गिरीश भाई ने पिछले 45 वर्ष क्या अनुभव किया, और मान लीजिए मैं और कुछ वर्ष जीऊंगा, और कुछ वर्ष मैं किस एक्सपीरियंस में, मैंने ये जर्नी को, ये समय को बहुत कौन से अनुभूति में बिताया, इज इक्वल टू व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या लोग ये कह सकते हैं? गिरीश भाई ने ना अपने जीवन को बड़ा आनंद पूर्वक जिया। क्यों? क्योंकि सदा उन्होंने गिरीश भाई को आनंद की स्थिति में देखा, बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ, हमेशा कभी घबराए नहीं, उनके चेहरे पे कभी भी डर का कोई भाव नहीं था। ही वॉज ऑलवेज वेरी करेजियस, क्योंकि वो हर समय करेज की अनुभूति को महसूस करते हुए उन्होंने वो जीवन जिया। तो लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस को करने के लिए जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा सोर्स से वो शक्तियों से अपने आप को बार बार भरते रहते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट जो राजयोग मेडिटेशन से हो सकता है, हमारे मन में सदा सकारात्मक चिंतन। और जो व्यक्ति सदा सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकता है, अर्थात वो नेगेटिविटी से दूर है। भले होगा वातावरण में नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव बातें, नेगेटिव घटनाएं, नेगेटिव प्रसंग हो रहा है, आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन सब के बीच मैं एक जागती ज्योत, अंधेरे में एक ज्योति पुंज, और रे ऑफ होप की तरह मैं वो क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे अंधकार मेरे ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है, मेरा प्रकाश, मेरी ज्योति की लाइट उस अंधकार पर विजय प्राप्त कर रही है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं सकारात्मक चिंतन कर पा रहा हूं, सकारात्मकता को देख पा रहा हूं नकारात्मक परिस्थिति में। वो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शक्ति है। क्यों अंदर शक्ति है? क्योंकि मैं शक्तिशाली सोर्स के साथ कनेक्टेड हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आत्मा बाय डिफॉल्ट शक्तिशाली हूं। राज्यों के अभ्यास से वर्तमान में जिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन एक अनुभूति है। कल क्या अनुभव करूंगा, परसों क्या अनुभव किया था, नहीं, अभी फिलहाल, राइट नाउ, इस मोमेंट में। लोग कहते हैं ना लिव इन द प्रेजेंट, हम कितना आसानी से कह देते हैं लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन लिव इन द प्रेजेंट वही कर सकता है जो राजयोगी हो। मैं राजा हूं अपने मन का, अपने मन को भविष्य की चिंता में जाने का परमिशन ही नहीं दे रहा हूं। मैं आत्मा राजा अपने मन को, जो हो गया आप कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज हिस्ट्री, उसमें भी अपने मन को जाने का मैं परमिशन नहीं देता। हम कहते ना बच्चे को, नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, अभी तो लॉकडाउन में बाहर जाने की छुट्टी नहीं है, नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। और ऐसा संदेश दिया जाता है कि खुद रिस्पॉन्सिबल बनकर बाहर घूमना बंद करो, घर के अंदर रहो, लेट अस ब्रेक द चेन ऑफ द स्प्रेड। इसी तरह अपने मन को भी एक मर्यादा के बाउंड्री में, हे मन, ना तुम्हें भविष्य की चिंता करनी है, ना तुम्हें भूतकाल में जाकर ओवरवेल्म्ड हो जाना है, अभी इस वक्त वर्तमान समय में अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या करूं, जिससे कि वर्तमान को जितना हो सकता है मेरे कैपेसिटी अनुसार सुंदर, सुखमय, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, पर्पसफुल बना सकूं। जो चीज मेरे कंट्रोल में है वो करूं, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए साक्षी, घबराओ नहीं। राजयोग मेडिटेशन से हम वर्तमान में टिक सकते हैं, और इससे क्या होगा, भविष्य, अगर मन भविष्य में जा रहा है, मेरा चिंतन पास्ट में जा रहा है, तो गारंटीड है स्ट्रेस, तनाव हमको अनुभव होगा। और जीवन क्या है? तनाव को अनुभव करना जीवन नहीं है, सुख को अनुभव करना, शांति को अनुभव करना, पावरफुल हूं वाली स्थिति को अनुभव करना ही जीवन है। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, कारोबार से संबंधित बातें, घर पारिवारिक संबंध की बातें, धन संपत्ति, फ्यूचर, बच्चे, COVID-19 ट्रीटमेंट कब ठीक होगा, हमारा जीवन कैसे होगा, इन सब जो है सो रियलिटी है, इन सब के रहते हुए मैं अपने आप को इन बातों को सोच करके अपने आप को स्ट्रेस नहीं दूंगा। है प्रॉब्लम, है चैलेंजिंग सिचुएशन, वही तो हमारे सुरक्षाकर्मी करते हैं। दुश्मन शायद रिसोर्स में ज्यादा है, ऐसे ही तो कारगिल के युद्ध में प्रकृति के अगेंस्ट में हमारी एनडीआरएफ टीम अपनी जान को खतरे में डाल करके लोगों को बचाते हैं, कितनी इंस्पिरेशनल है। ऐसे ही अभी फिलहाल जो ये कोविड 19 की सिचुएशन है, इसमें स्वयं और अपने जो समाज में लोग हैं उनके अंदर आंतरिक सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब तक कोविड रहेगा, पता नहीं ये हालात कब ठीक होंगे, पता नहीं कब ठीक होंगे। देखो गिरीश भाई का मन फ्यूचर में जा रहा है, ठीक है ना, पता नहीं। अभी तो आप वर्तमान को पॉजिटिवली सोच सकते हो, थैंक गॉड मैं सुरक्षित हूं, मुझे कोविड हुआ बिना कॉम्प्लिकेशन के, 14 दिन क्वारंटाइन, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ बुखार, लेकिन अहो सौभाग्य, मैं बहुत लकी हूं। और ये बातें मैं दूसरों के साथ शेयर करूं कि चिंता की बात नहीं है, पॉजिटिव रहो, ध्यान रखो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं और उसे बाहर आ जाएंगे। तो हम वर्तमान में रह सकते हैं, सकारात्मक चिंतन होगा। तनाव, क्योंकि तनाव का कारण मैं हूं, तनाव का कारण मेरा चिंतन है, किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूं। और अगर मन सशक्त हो गया और आत्मबल के आधार से मन को मैं कहता हूं, हे मन तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना है, ऑटोमेटिकली आपको तनाव नहीं होगा। और इसका एक फायदा जो मैंने देखा है वो हमारे संबंध में, राजयोगी अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है। संबंधों में तनाव कैसे आते हैं? जैसे मैं चाहता हूं वैसे तुमने नहीं किया, जैसे मैं चाहता हूं वैसे बच्चे सुनते नहीं है, हमारे कलीग्स मानते नहीं है, जैसे मैं चाहता हूं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर संबंधों में दो लोगों के बीच में खींचातानी होती है, मैंने आपको ये कहा आपने ये नहीं किया वो, और फिर करवाने के लिए फिर हमको आवेश में आना पड़ता है, क्रोध में आना पड़ता है। लेकिन राजयोगी वो स्वयं आंतरिक शक्तिशाली होने की वजह से, इनर स्ट्रेंथ होने की वजह से, वो अपने एक्सपेक्टेशन, दूसरों से जो अपेक्षा रखता है उसको भी बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है। एक बार प्यार से कहेंगे, दो बार कहेंगे, तीन बार कहेंगे, पता कर, अब पेशेंस है मेरे अंदर, क्यों? क्योंकि मैं राजयोगी हूं, मेरे अंदर इतना ज्यादा चीजों को सहन करने की शक्ति है। संबंध हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, सुमधुर हो जाएंगे। और इन सब का जो ओवरऑल इंपैक्ट होता है हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस पर हम बहुत आसानी से बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के, स्वयं हम अपने डॉक्टर बन जाते हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। कहते हैं बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है। और आज जो विशेष जिस प्रकार की परिस्थिति है कोविड के कारण, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, और इम्यूनिटी भी कम होने के साथ साथ अगर मन की अवस्था भी कमजोर है तो फिर उसके कारण कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के बहुत, मन से अगर घबरा गए तो फिर हमारे शरीर का अंग भी हमारा साथ नहीं देता, दवाइयों का जो सपोर्ट होता है, दवाइयों से जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए वो बहुत जल्दी नहीं मिलता क्योंकि मन घबराया हुआ है। हमारा जो मनोवृत्ति है, जैसा हम सोचेंगे वैसा मेरा शरीर करेगा। हाँ ठीक है, कोविड हो गया ना, 14 दिन आराम से एकांत में बैठकर अपने आप के साथ बातें करेंगे, लेट मी ऑल्सो एक्सपीरियंस व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एक प्रकार की तपस्या हो सकती है। तो राजयोग मेडिटेशन फॉर इनर स्ट्रेंथ का तात्पर्य है कि हम मन बुद्धि से अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करें स्वयं के लिए, परमात्मा के साथ बात करें, उनसे वो सब शक्तियों को अनुभव करें, और प्रैक्टिकली हमारे जीवन में जब हम कारोबार करते हैं, कर्म करते हैं, तो बहुत शांति से, प्यार से, आनंद से, आशावादी होकर के अगर हम ये करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और मैं समझता हूं हमारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो शारीरिक तौर पर बड़े बलशाली हैं और मानसिक तौर पर भी बलशाली हैं, और अगर बलशाली में थोड़ा मानसिक लेवल पर थोड़ा कम है तो राजयोग के अभ्यास से हम अपने आंतरिक पर्सनालिटी को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं और हमारा जो जीवन है कैसी भी परिस्थिति हो वो बहुत ही सुखदायी, बहुत ही शक्तिशाली हम अपने जीवन को अनुभव कर सकते हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं यही आशा करता हूं, बहुत होपफुल हूं कि ये जो कठिनाई का दौर चल रहा है ये कितना भी लंबा चले हम ये आशा कर सकते हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाहर का दौर कैसा भी हो लेकिन अंदर की स्थिति सदा शांत, सदा शक्तिशाली, सदा पॉजिटिव। तो जीवन का आधार बाह्य जगत का वातावरण नहीं है, जीवन का आधार अंतर जगत की मनोस्थिति है। तो यही मैं आशा करता हूं कि आप सब इस मन की स्थिति पर थोड़ा ध्यान देंगे, उसके लिए अभ्यास करेंगे राजयोग का, परमात्मा से कनेक्ट करके शक्तियां भरेंगे और अपने इर्द गिर्द एक अगरबत्ती की तरह स्नेह की खुशबू, शांति की खुशबू, पॉजिटिविटी की खुशबू, होप की खुशबू फैलाएंगे। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वो बहुत अच्छा महसूस करें, आप सुरक्षित रहें, दूसरों के अंदर सुरक्षा की भावना जागृत करें। और जब भी ऐसा कोई परिस्थिति होता है, हमारे साथ कोई पुलिसकर्मी या कोई सुरक्षा बल होते तो हम सेफ महसूस करते हैं। तो आप परमात्मा संग में सदा सेफ रहें, आप दूसरों को सेफ्टी प्रदान करें। इस आशा के साथ आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ओम शांति, धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया अभ्राता गिरीश जी, आपने राजयोग की जो सुंदर व्याख्या हमारे सामने रखी है, अब हमें भी इस संजीवनी के सेवन करने की इच्छा जागृत हो गई है। क्योंकि योग तो हमने अनेक सीखे और जाने, लेकिन राजयोग क्यों, ये राजयोग है, सर्व योगों का राजा है, आज हमें ये जानने को प्राप्त हुआ। और वैसे भी अलग अलग लोगों को पकड़ने से अच्छा है कि राजा को ही पकड़ लिया जाए, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि एक राज्य के राजा थे, उन्होंने अनाउंस करवा दिया, उनकी कोई संतान नहीं थी, कि कल आप सभी आइए और जो जिस चीज को हाथ लगाएगा राज्य की वो चीज उसकी हो जाएगी। अब सभी लोग सोचने लगे कि हम जाएंगे, मुझे तो हाथी पसंद है, मैं हाथी को हाथ लगाऊंगा, किसी ने कहा मैं घोड़े को हाथ लगाऊंगा, किसी ने कहा मैं आभूषण को हाथ लगाऊंगा, वो मेरा हो जाएगा। सब अपनी अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे। दूसरे दिन सभी पहुंचे और अपनी अपनी इच्छित चीजों की ओर भागने लगे ताकि उस चीज को छुएं और वो उनका हो जाए, उनसे पहले कोई और ना छू सके। एक बुद्धिमान युवक था, उसने किसी चीज को नहीं छुआ, वो राजा के पास गया और राजा को ही छू लिया। ये आपने कहा था कि जिस चीज को छुएंगे वो आपका हो जाएगा। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और राजा को छूते ही जैसे पूरा राज्य ही उस युवक का हो गया, वो युवराज बन गया और आगे आने वाले समय में वो राजा बना। तो सचमुच यदि हम राजयोग, जो हमें सर्व प्राप्ति कराने वाली चीज है, विधि है, क्यों ना हम भी उसे पकड़ लें ताकि जीवन सहज और सरल हो जाए। राजयोग की और गहराई में हमें ले चलने के लिए और इसकी गहन अनुभूति कराने के लिए अब हमारे बीच आ रहे हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी, जो दिल्ली से हैं। पिछले 35 वर्षों से आप राजयोग का गहन अभ्यास कर रही हैं और सुरक्षा प्रभाग की सेवाओं में आप निरंतर सक्रिय रहती हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे अपने सुंदर अनुभवों को लेकर, क्योंकि अनुभव भी हमें बहुत प्रेरित करते हैं। उत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने अनुभव किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो राजयोग के क्या गहन अनुभव होते हैं, उनसे प्राप्तियां क्या होती हैं, इसे लेके हमारे बीच होंगे इंस्पेक्टर बीके संजीव जी, जो कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में पदस्थ हैं, सेवारत हैं। तो आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। आज हम राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि भारत की प्राचीन पद्धति है। राजयोग मेडिटेशन। राजयोग का अर्थ क्या है? ऐसा योग जो स्वयं पर राज्य करना सिखाए। स्वयं पर राज्य करना, क्योंकि हमें दूसरों पर तो राज्य नहीं करना है, स्वयं पर राज्य करना है। तो स्वयं पर राज्य करने का अर्थ होता है अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों को हम अपने अनुसार चला सकें। तो राजयोग का अभ्यास हमें स्वयं को नियंत्रित करना सिखाता है, स्वयं को प्यार से चलाना सिखाता है। राजयोग मेडिटेशन, योग का मतलब होता है कनेक्शन। जैसे कहते हैं इस फलाने व्यक्ति का योग इस समय के साथ बहुत अच्छा है, तो योग का मतलब कनेक्शन। राजयोग में हम दो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज के साथ कनेक्शन में आते हैं। एक अपनी आंतरिक शक्ति अर्थात अपनी आत्मिक शक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं और दूसरा वो जो ईश्वरीय शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, उस परमात्मा को भी मन और बुद्धि से कनेक्ट होकर हम कैसे याद करें। तो इस कनेक्शन के दौरान राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी पद्धति है जो वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसा टूल है जिसके आधार पर हम ये दो कनेक्शन बनाते हैं, जिसमें सोल कॉन्शियसनेस और परमात्मा कॉन्शियसनेस। इन दो बातों का अभ्यास जीवन में हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ता है। देखिए हमारे मन की शक्ति दो बातों से बहुत अच्छी बनती है। एक है सोल कॉन्शियसनेस अर्थात हम जो हैं, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारी आत्मिक वास्तविकता है, जो हमारी आत्मा है, उसको जानना पहचानना और कॉन्शियसली हम अपनी आत्मिक स्मृति में बार बार स्थित हो जाएं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में स्थित होने से मेंटली हम जब कॉन्शियस लेवल पर बार बार अपने को सोल समझ करके कर्म करते हैं तो हमारी सोल के अंदर, आत्मा के अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो विशेषताएं हैं, वो स्वतः कार्य करती हैं। उसकी एनर्जी हमारे सोचने बोलने और व्यवहार करने में भी फ्लो होती है और मन की शक्ति बढ़ती है परमात्मा स्मृति से अर्थात ईश्वर को याद करने से। आज सब लोग ईश्वर को याद तो करते हैं, एक तरफ पूजा भी हो रही है, पाठ भी हो रहा है, कथा हो रही है, दरगाह भी जाते हैं या अन्य कोई चीज भी करते हैं, दूसरी तरफ मन की अशांति अपनी जगह बनी हुई है। ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कर किस लिए रहे थे ये सारी चीजें? ईश्वर को क्यों याद किया जाता है? ताकि मन की शांति बढ़े, मन की सुख शांति बढ़े। तो कहने का भाव क्या है, राजयोग में आत्मिक कनेक्शन हमारा अच्छा हो और हमारा आत्मा के नाते से परमात्मा के साथ का कनेक्शन अच्छा हो। लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्शन रखने के लिए भी चार बातों का हमें आधार चाहिए। कोई भी बात का कनेक्शन चाहिए तो हमें आधार, कुछ ना कुछ तो उसका आधार बनता है। तो एक है, अगर जिससे हमें कनेक्शन रखना है उसकी पूरी पहचान चाहिए, चाहे वो आत्मा है या परमात्मा है। परमात्मा शक्ति के साथ एक अच्छा कनेक्शन रखने के लिए परमात्मा की सही पहचान हो कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस समय करते हैं, उनके दिव्य अवतरण, परमात्मा की सही पहचान, उनके सत्य स्वरूप की पहचान, कर्तव्यों की पहचान। तो जब हमारे पास ये पहचान क्लियर है, क्लैरिटी है इसके बारे में, हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उसके आधार पर परिचय होता है। और परिचय जब होता है तो साथ ही साथ संबंध, परमात्मा के साथ हम आत्मा का संबंध क्या है, पिता पुत्र का संबंध है और परमात्मा का आत्मा के साथ एक पवित्र संबंध होता है, क्या उस संबंध की अनुभूति है हमें। तीसरी बात स्नेह, परिचय, संबंध और स्नेह। देखिए याद हम किसको कर सकते हैं, जिसके साथ हमारा स्नेह हो, और स्नेह किसका होता है, जिसके साथ हमारा संबंध हो। तो और संबंध किसके साथ होता है, जिसका परिचय हो। तो परिचय, संबंध और स्नेह। जब हमें परिचय मिल जाता है, परमात्मा के साथ आत्मा का रिश्ता समझ में आता है, तो आत्मा का स्नेह जागृत होता है अपने सत्य पिता परमात्मा के साथ। और फिर उसके बाद जो प्राप्तियां होती है परमात्मा से, इस बात की स्मृति कि हमें परमात्मा को याद करके क्या मिलता है, शांति का वो सागर है, तो नेचुरली हमें शांति की प्राप्ति होती है। सुख का वो सागर है तो हमें सुख स्वरूप बनने में मदद मिलती है। परमात्मा हर गुण और शक्ति का सागर है तो क्या मुझे गुणों और शक्तियों की अनुभूति है। तो जब हमें प्राप्तियां समझ में आती है कि ईश्वर को याद करने से क्या प्राप्ति हो सकती है, तो उससे क्या होता है, हमारा योग जुटना सहज हो जाता है। तो परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, ये आधार है ईश्वर को याद करने का। और इसी आधार पर जब हम ईश्वर को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करते हैं तो हमें आंतरिक आत्मिक प्राप्तियां होने लगती हैं, जिसको आज हम आमाशा में इनर स्ट्रेंथ कहते हैं, मन की शक्ति कहते हैं, बुद्धि बल कहते हैं, संस्कारों की श्रेष्ठता कहते हैं। तो राजयोग का अभ्यास हमें प्राप्तियां कराता है। तो वो प्राप्ति किस रूप में हमें मिलती है, हमें क्या मिलेगा राजयोग करने से। जब हम आत्मिक अभ्यास करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं दिल से, तो क्या होता है कि हमारे अंदर की अष्ट शक्तियां जागृत होती हैं। गुणों का विकास तो होता ही है, लेकिन गुणों की जो चरम सीमा है, या कहें गुणों का जब पराकाष्ठा होती है, तो वो शक्तियों का रूप ले लेती है। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली रेगुलर राजयोग के अभ्यास से कुछ शक्तियां विकसित होती हैं, जैसे सहन शक्ति, संभालने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आदि अन्य शक्तियां भी हैं। तो ये सारी शक्तियां नेचुरल रूप से हमारे अंदर आने लगती हैं। और आज हमें जीवन में यही तो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टॉलरेंट है, जब समय की आवश्यकता होती है तो वो टॉलरेंट भी है, एडजस्ट भी अच्छा कर लेते हैं, निर्णय उनके ठीक जाते हैं, तो क्या कहते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो कहने का भाव क्या है कि आज हम सबकी ये जरूरत है कि हम राजयोग के अभ्यास से अपने मन को शांति, सुख और शक्ति से भरे और अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सके। चलिए थोड़ा देर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। उससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जैसे राजयोग करने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है, किन बातों को हमें जरूरी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऐसे ही सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर सकते हैं, परमात्मा को निरंतर याद कर सकते हैं, एका दिन की बात तो है नहीं। तो इसलिए इसके भी कुछ आधार हैं। जब हम नियमित रूप से स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, परमात्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ पवित्र जीवन शैली बनाते हैं, दिव्य गुणों की धारणा का पुरुषार्थ करते हैं और शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं, ईश्वर की याद में बना हुआ अन्न ग्रहण करते हैं, तो ये चारों ही बातें, सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा, पवित्र जीवन शैली और शुद्ध अन्न, जब हम इन बातों की धारणा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे लिए योग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इजी हो जाता है, क्योंकि ये चारों ही बातें योग में सहयोगी बन जाते हैं। तो आइए थोड़ा समय के लिए हम योग का अभ्यास करें। मैं कुछ शब्द आपको कमेंट्री के रूप में देती चाहूंगी। आपका सारा ध्यान इन शब्दों को सुनते हुए आप उसको फील करने का प्रयास करें। आपका ध्यान आपके अपने विचारों पर ही हो। हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें खुली आंखों से मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मन को एकाग्र होने की ट्रेनिंग मिली हुई है और यही तो हमें चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में कहां पर भी हम रहें, चलते फिरते उठते बैठते भी हम मेडिटेशन कर सके, और ये संभव है हमारा मन एकाग्र हो सके। तो हम खुली आंखों से मेडिटेशन करेंगे। आप सभी आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। किसी भी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। हाथ पांव कंफर्टेबल करके बैठ जाएं। रिलैक्स, कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो, परंतु रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाएं। अब मन में चित्र बनाएं। आपके मस्तक के बीच, आंखों के पीछे, आपकी आत्मशक्ति एक दिव्य सितारे के रूप में चमक रही है। मन की आंखों से देखें, मन में चित्र बनाएं। एक छोटा सा सफेद रंग के प्रकाश से भरा ज्योति का पुंज आपके मस्तक के बीच चमक रहा है। मन ही मन उसको देखते हुए, अनुभव करते हुए महसूस करें। मन रूपी सागर में विचारों रूपी लहरें शांत हो रही है। आसमान के पार से, ब्रह्मांड घर से परमात्मा की प्रकाश भरी किरण लेजर बीम की तरह आपकी आत्मिक शक्ति को भरपूर कर रही है। परमात्मा की प्यार भरी, स्नेह भरी, शक्तिशाली के लिए आपके अंदर मानसिक शक्ति को बढ़ा रही है। आपके मन में पहले से बेहतर शांति है। बुद्धि पहले से ज्यादा स्थिर है और आपके संस्कारों में पहले से अधिक श्रेष्ठता आने जा रही है। अब एक पावरफुल संकल्प करें। मैं एक शांत स्वरूप सशक्त आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।
मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं जिसने मुझे जीना सिखाया और विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना और खुश रहना सिखाया। जब मैं अपने को देखता हूं, अपने पहले के जीवन की तुलना में, तो अपने को बहुत सशक्त पाता। जहां पहले छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, निराश हो जाना और सिस्टम को दोष देना, वहीं अब मुझे लगता है कि कमियां निकालने वाले तो लाखों लोग हैं, कमाल करने वाला भी कोई। तो मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी कि फर्स्ट यू प्रोटेक्ट योर इमेज, देन इमेज यू प्रोटेक्ट। इमेज मीन आई एम एज। मैं जो काफी समय से, मैं जिनके भी संपर्क में आता हूं, चाहे अपने ऑफिशियल ऑफिशियल कैपेसिटी या पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में, तो क्या लोग मेरे से मिलने में घबराहट महसूस करते हैं या वो खुलकर अपने मन की बात मुझे कह सकते हैं? क्या मैं सबसे इजीली अवेलेबल हूं सबके साथ सबके लिए? तो मुझे लगता है इसमें भी शक्ति चाहिए, सबकी सुनना और उनकी उनके अनुसार अपनी कैपेसिटी से मदद करना। मैंने देखा लोग हमेशा इस चीज में इकट्ठा करते हैं, इस चीज की चिंता करते हैं कि अगर कोई मुसीबत आए तो मेरी मदद के लिए कितने लोग तैयार हैं। मैंने अपने जीवन में सदा एक लक्ष्य बनाया और ईश्वर को कहा है कि मुझे किसी का सहारा बनना चाहिए, मुझे इतना सशक्त कर दे कि मैं हजारों लोगों का सहारा हूं, मुझे किसी का कंधा नहीं चाहिए, मैं हजारों लोगों के लिए कंधा बन सकता हूं। इससे मेरे जीवन में यह परिवर्तन आया कि मैं लोगों से जानकारी जब होती है, मित्रता होती है, तो मैं ये सोच के मित्रता नहीं करता कि ये मेरी कभी काम आए, मैं उन्हें अक्सर अपना नंबर देता हूं कि मेरे लिए कभी भी कोई सेवा हो तो जरूर बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर का ये गुण है कि वो सबकी मदद करता है और अगर मैं उसकी संतान हूं तो मुझे सबकी मदद करनी चाहिए, तो करवाने वाला तो है। जब मैं इस कार्य में आगे बढ़ता हूं तो मैं अपने को अंदर पावरफुल महसूस करता हूं। दूसरी बात मैंने सीखी देना, मैंने सीखा मेडिटेशन से, तो राजयोग मेडिटेशन का मैं अभ्यास करता हूं कि दाता ही पाता है, देने वाला ही सुखी रहता है, जो दोगे वो आपके पास लौट कर आता है। तो मैंने जीवन में खुशियां देने का कार्य शुरू किया। मैं अपने इस नौकरी से जब भी समय निकलता है इसके अलावा अपना सारा समय मानवता की सेवा अपने को अर्पित करके, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये कोई एहसान नहीं कर रहा जिस पर, मैं मानवता की सेवा करता हूं, इसमें मेरे को भी खुशी मिलती है, मेरे को ही प्राप्ति होती है। मैं से दैट दिस इज माय पास टाइम को मेरा शौक है कि सबके संपर्क में आना और जो भी यथा शक्ति किसी की मदद हो सके वो कर, और सबको निर्दोष समझ, सब मेरे जैसे नहीं, कोई कमजोर है, कोई मजबूर है, कोई मजबूत है, कोई मौके का फायदा उठाने वाला है, तो मैं उसमें भी पॉजिटिविटी देखता हूं कि अगर ये मौके का फायदा उठा रहा है तो इसे फायदा उठाना पड़ता है, कल को इसे बहुत ऊंची बात समझ आ जाए कि देने वाला ही पाता है तो ये उसका भी फायदा होगा। मैंने नफरत की बजाय प्यार का रास्ता, क्रोध की बजाय शांति का रास्ता, और मैंने पाया कि मेरा जीवन ज्यादा आसान हो गया। यही आंतरिक शक्ति है जो मुझे दूसरों के संपर्क में आने पर खुशनुमा होती है और मैं अपने को बहुत पावरफुल समझता हूं, फिजिकली नहीं न पद वाइज, क्योंकि ये पद आज है कल नहीं मिलेगा, जो शारीरिक शक्ति है ये आज है कल नहीं मिलेगा, धन भी ऐसा नहीं है, कि मेरी आंतरिक शक्ति शरीर वृद्ध होने के साथ साथ बढ़ रही है। आंतरिक शक्तियां तजुर्बे की तरह है, जिस तरह उम्र बढ़ती है तजुर्बा भी बढ़ता है, तो दुनिया में लोग जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो मजबूर होते चले, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजबूत होता चला जा रहा
हूं। राजयोग के गहन अनुभूति के लिए कमला बहन जी आपका, और सुंदर अनुभव के लिए संजीव जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेरित हो रहे हैं हम, और साथ ही हमारे अंदर भी एक उत्साह जागृत हो रहा है कि हम भी इस ओर अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि सचमुच समय की ये मांग है कि हम अपने भीतर चल के अपने आप को तारें। किसी ने कहा है ना कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। सचमुच यदि हमें तरना है, तरना अर्थात अपने आप को अच्छी तरह से जानना है, समझना है और संसार को कुछ दे के जाना है, तो भीतर पहले चलना होगा। अंतर की ज्योति प्रज्वलित होगी तभी तो हम बाह्य जगत को भी प्रज्वलित कर पाएंगे। बुद्ध जी जब अपने महाप्रयाण की तैयारी में थे, उनके शिष्य ने कहा कि भंते आप चले जाएंगे तो संसार को कौन प्रकाशित करेगा, तो बुद्ध जी ने कहा कि आनंद अप दीपो भव, तुम स्वयं को प्रकाशित कर लो तो समाज संसार स्वतः प्रकाशित होता चला जाएगा। आज लगता है इसकी ही आवश्यकता है, हम खुद को प्रकाशित करें ताकि हमारा बाह्य जगत प्रकाशित होता चले। हम खाने पीने या फिर सांसारिक बातों में ही मस्त हैं आज के दौर में, लेकिन कहीं अंदर चल के अपने आप को जानकर जब हम औरों को देने के लिए तैयार होंगे तभी हम वास्तव में आत्मसंतोष का अनुभव कर पाएंगे। और आज का ये सत्र भी विशेष करके इसी के लिए समर्पित था कि कैसे हम राजयोग के माध्यम से अपने अंदर चल सकते हैं और अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। संध्याकालीन सत्र में पुनः 7:30 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। अगले 7 दिनों तक आपके लिए सुंदर राजयोग मेडिटेशन कोर्स की व्यवस्था की गई है। 24 मई से 30 मई तक शाम को 7:30 बजे से लेके 8:15 बजे तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जूम लिंक है omshanti.in/rajyoga। इसके साथ साथ यूट्यूब लिंक है tiny.cc/rajyoga2021।
अपनी जरूरतों को किनारे रख हमारी सुरक्षा जिनके जीवन का ध्येय है, जिनका व्यक्तित्व ओज वीरता और जुनून के तेज से चमकता है, भारत के जांबाज शूरवीरों के लिए ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग प्रस्तुत करता है 22 और 23 मई को 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस इन स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंज। Awakening TV चैनल पर, टाटा स्काई 1084 पर या जियो टीवी 1060 पर।
हे ईश्वर, और कब तक चलेगा ये सब?
या अल्लाह रहम कर, अब बर्दाश्त नहीं होता।
है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू?
हर मन भगवान को याद कर रहा है, लेकिन उस याद में दर्द है, याद में गुस्सा है, याद में प्रश्न है, ये सब क्यों हो रहा है, भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं। मन प्रश्नों से घिरा हुआ है, ये सब कब तक ऐसे ही चलेगा।